Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 4, Verse Number 30. Kripaya, in atyant hi pavitra shabdon ko mere saath saath uchcharan karne ka prayas kijiye. Bhagwan kehte hain,
Sarve piti yajna vidu, yajnaksha pitakalmasha. यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मशा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मशा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षिप यज्ञक्षपितकर्मशा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मशा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मशा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मशाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मशाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्
शब्दों का अर्थ सर्वे पियेते सर्वे अर्थात सभी अपि यानी ऊपर से भिन्न होकर भी एते यानी ये यज्ञविदो यानी यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित यज्ञक्षिपत यज्ञक्षपित का मतलब होता है यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ कलमशा अर्थात पाप कर्मों से यज्ञ शिष्टामृत भुजो यज्ञ शिष्टा यानी यज्ञ करने के फल का अमृत भुजो यानी ऐसे अमृत चखने वाले यान्ति ब्रह्म सनातन यान्ति मतलब जाते हैं ब्रह्म यानी पर ब्रह्म में सनातन मानी नित्य आकाश को अनुवाद ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित नहीं हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्मय के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान की शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथ वितन्तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गारांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिभ्ये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। आज भगवान जो हम अभी यज्ञ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने काफी टाइप के भगवान ने यज्ञ बताए हैं, कुछ द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और है ना सांसों की क्रिया जैसे पतंजलि, प्रत्याहार और प्राणायाम, ये सारे यज्ञों के विषय में हम पढ़ रहे हैं ना इतने टाइम से, जैसे श्लोक नंबर 27, 28, 29 और 30 यानी 27, 28, 29 और 30। आज भगवान क्या कह रहे हैं, जो यज्ञ को जानते हैं, अब जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ का क्या मतलब होता है कि हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं वो सुप्रीम पर्सनालिटी यानी जो एक हाईएस्ट पर्सनैलिटी जो परम भगवान है उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, और उनको प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ चीज का त्याग कर रहे हैं। यज्ञ में त्याग हो रहा है ना, कोई अपने धन का त्याग कर रहा है, कोई अपने ना समय का त्याग कर रहा है, जैसे इंद्र तृप्ति में ना लगाकर भगवान के विषय में स्वाध्याय यानी शास्त्र अध्ययन करने का त्याग कर रहा है, कुछ ना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तो कुछ ग्रस्त होने के बावजूद भी यानी कि ब्रह्मचर्य क्या करते हैं कि वो जैसे हमने 26 में पढ़ा श्रोत्रादीन इंद्रियां यानी कि वो क्या करते हैं अपने जो इंद्रियां हैं उनसे भौतिक इंद्र तृप्ति ना करके उनको संयम करते हैं, और व्रत क्या करते हैं उनके पास विषय वस्तु होती है लेकिन फिर भी वो उस विषय वस्तु से इंद्रिय तृप्ति ना करके उसको सीमित कर देते हैं ताकि वो धर्म का पालन करते। तो ये सारा जो भी कर रहे हैं यज्ञ उसमें सबसे मेन चीज क्या है कि वो इंद्र तृप्ति ना करके इंद्रिय संयम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इंद्र तृप्ति जो है वो भौतिक अस्तित्व का मूल कारण, हम संसार में इसीलिए बारंबार जन्म लेना पड़ रहा है कि हमको इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है, और जैसे ही कोई इंद्र तृप्ति को त्याग करके यज्ञ करता है तो जो यज्ञ को जानते हैं सर्वे पियते यज्ञवितो, भगवान कहते हैं वो सभी जो यज्ञ को जानते हैं अब उनको तीन टाइप के फल मिलते हैं। कौन से तीन टाइप के फल मिलते हैं यहाँ पर बताया, यज्ञ क्षपित कर्मशा, सबसे पहले क्या होगा यज्ञ करने के कारण वो शुद्ध हो जाएगा, क्षिप्त कर्मशा यानी पाप से वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपराध क्यों हो रहा है, इंद्र तृप्ति के कारण अपराध हो रहा है, इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है तो अपराध नहीं होगा, तो शुद्धिकरण हो रहा है पहला यानी अपराधों से साफ हो जाता है, अपराधों से मुक्त हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, यज्ञ शिष्टामृत बुझो, यानी कि यज्ञ करने से जो फल अमृत मिलता है, अमृत यानी ऐसा यज्ञ के बाद, अमृत का मतलब यहाँ पर क्या है कि आनंद प्राप्त होता है। जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो एक हृदय के अंदर आत्मा के अंदर आनंद की स्फूर्ति होती है। पहले शुद्धिकरण हुआ यानी अपराध जो है वो सब यज्ञ करने से छूट जाते हैं, अपराधों से शुद्ध हो जाता है, और यज्ञ किया मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया ऐसा मन में आता है तो उससे आनंद की प्राप्ति होती है। संसार में भी जब हम कर रहे होते हैं तब संसार में भी कोई भी कार्य हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो एक बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। और उसके बाद क्या होता है, यान्ति ब्रह्म सनातना, यान्ति मतलब जाते हैं ब्रह्म सनातन यानी अंत में सनातन ब्रह्म प्राप्त होता है। अब सनातन ब्रह्म यानी कि अगर इसमें क्या है, मैंने जैसे आपको हम पहले से ही डिस्कस कर चुके कि कर्म योग और भक्ति योग जो है वो बहुत सिमिलर है, उसमें खाली डिफरेंस क्या है कि कर्म योग में आपको ये नहीं खबर है कि भगवान कृष्ण है, वो भगवान है सुप्रीम पर्सनैलिटी है जिसको संतुष्ट करने के लिए आप कर रहे हो, लेकिन वो कृष्ण है ये करके नहीं, बस वो भगवान है ऐसे करके। तो यदि अगर किसी को इतना शुद्धिकरण हो जाता है या किसी का भाग्य इतना उदय हो जाता है, किसी किसी शुद्ध भक्त की यदि उसको संगति प्राप्त हो जाती है तो वो बहुत सरलता से कृष्ण को समझ सकता है कि वही कृष्ण जो वास्तव में जिसके लिए जिसे हम भगवान कहते हैं वह कृष्ण ही है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है, यान्ति ब्रह्म सनातना, कि वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है, दिव्य आकाश की ओर जाता है। और श्री प्रभुपाल ने क्या बताया कि अपितु तो अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म्य द्वारा या श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। यानी अगर उसे पता है, भगवान ने साथ साथ कह दिया यान्ति मध्याजिनों के माम, अगर आप अंत समय में मुझे याद करोगे तो मेरे पास आओगे, और अगर वो भगवान को समझ जाता है अंत समय में उसका सौभाग्य हो जाता है, वो कृष्ण को जानने लगता है तो वो कृष्ण को प्राप्त होता है, क्योंकि इंद्रिय संयम तो वो भी कर रहा है और भक्त भी कर रहा है। अब उसने किस लेवल पर भगवान को सरेंडर किया, भगवान के दिव्य जन कर्म। भगवान ने कहा कि मेरे जन और कर्म दिव्य हैं और ये जान लेता है। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, जो ये जान लेता है तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्मनायति मामेति, मेरे से संबंधित होगा तो फिर क्या होगा, मेरे को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बताया भगवान कह रहे हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों के अर्थ को जानने के कारण पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं। सबसे पहले वो उनके पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का मकसद जो है वो इंद्र तृप्ति नहीं बल्कि भगवान को प्रसन्न करना है, और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर आनंद प्राप्त करते हैं और अंत में परम दिव्य आकाश को की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जितने भी प्रकार के यज्ञ, जैसे द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, जो कुछ भी यहाँ पर व्याख्या कर चुके हैं, उन सब का एक उद्देश्य क्या है कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों की जब तक भोग में आसक्ति लगी रहेगी, जब तक जीव के अंदर से ये देहात्म बुद्धि नहीं चली जाती है कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर को प्रसन्न करना। वास्तव में आज का मनुष्य, आज अगर किसी को बोलते ना हम कि हमें ये चार अपराध नहीं करने चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए और ना शराब नहीं पीना चाहिए, इलिसिट सेक्स नहीं है और जुआ नहीं, तो फिर बोलेंगे इतनी चार्मलेस लाइफ कोई कैसे जिएगा। उनको ऐसा लगता है, जीव को ऐसा लगता है, फिर आप लोग जीते कैसे हो। मतलब ऐसा लगता है कि यही जिंदगी, उनको लगता है कि इंद्रिय भोग ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, या मनुष्य जन्म ये कुत्तों बिल्लियों की तरह इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं मिला है। यदि किसी को अगर ये खुली बात बता देना तो वो समझेंगे कि ये तो पागल हो गए हैं बिचारे, और बिचारे लगेंगे कि ये कितने बिचारे हैं, कोई इंद्रिय तृप्ति को इनकी लाइफ में कितनी चार्मलेस, कितनी टेस्टलेस लाइफ है जिसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे। जबकि भगवान क्या कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जो यज्ञ नहीं करते उनका क्या होगा उनका, लेकिन अभी तो यही बताया कि आनंद जो जीव सोच रहा है कि मुझे भौतिक इंद्र तृप्ति करके आनंद मिलेगा, वो तो बेवकूफ है। वास्तव में इंद्र तृप्ति करके आनंद नहीं मिलेगा, आनंद ही लक्ष्य है ना। तो पूछ कर देख लो आज तक कितने करोड़ों लोग ने इंद्र तृप्ति की है, किसी से पूछ कर वो पता चलेगा कि क्या आपने इंद्र तृप्ति से आनंद प्राप्त किया। और बताए जो भी इंद्र तृप्ति का साधन हम करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, उस समय तो हो जाता है लेकिन बाद में हृदय के अंदर एक घिन हो रही होती है अपने अंदर से कि मैंने ये गलत काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। इवन और छोड़ो, अगर कहीं पर दावत में जाते हैं, अगर ठूस के थोड़ा खा भी लेते हैं ना एक्स्ट्रा, तो भी है ना उनको ऐसा लगता है कि खाऊंगा, ज्यादा खा लिया, अभी देखो एसिडिटी हो रही है। मतलब इंद्र तृप्ति जहां पर एक्सेस होती है वहीं पर है ना घिन आने लगती है, दुख का अनुभव होता है। लेकिन भगवान को तृप्त करने के लिए जैसे ही जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही अंदर से एक आनंद की लहर उठ रही होती है, आनंद का अनुभव हो रहा होता है। तो हर जीव का ये उद्देश्य है कि हम आनंद प्राप्त करें, लेकिन बेवकूफ है वो शास्त्र के अनुसार आनंद नहीं उठाना चाहते हैं, वो अपनी बुद्धि के अनुसार, वो बस ये सोचते हैं कि मेरी बुद्धि में ही आता है, ये खा लूंगा तो आनंद आएगा, ये पहन लूंगा तो आनंद आएगा। जिसने पहन के देखा, जो आज एक दिन में चार चार ड्रेस पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे पूछो क्या संतुष्ट हो तुम, संतुष्टि होगी नहीं। इंद्रिय तृप्ति से संतुष्टि नहीं होती है, इंद्रिय संयम से संतुष्टि होती है। वास्तव में तो उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, संतुष्टि है ना। तो संतुष्टि का जो तरीका है वही हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ को विधि को जानते हैं, वही ऐसा ना आनंद को प्राप्त करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी एक अत्यंत ही सुंदर बात बताते हैं कि जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल तक स्थित ना हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यानी कि भगवान सच्चिदानंदमय है और वास्तव में आनंद हमें तभी प्राप्त होगा जब हम उस धरातल तक, दूसरे आकार इंद्रिय तृप्ति के धरातल से, इस स्टेज से ऊपर उठना पड़ेगा। ये एक गलत धारणा है, एक गलत सोच है कि यहीं पर इंद्रिय तृप्ति करते 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 आनंद प्राप्त करूंगा। नहीं, सच्चित आनंद तो भगवान है, भगवान की सेवा करके आनंद प्राप्त होगा। तो हमें इस स्टेज से ऊपर उठना होगा। और श्रील प्रभुपाद ने बताया कि सारे जो यज्ञ हैं वो उससे करने से पाप कर्म खत्म होते हैं। तो क्या होता है, पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाता है और जीवन में इस प्रगति से मनुष्य केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है। सिर्फ यही है, एक ऐसा है जिससे यज्ञ शिष्टामृत बुझो, सुख और आनंद यदि चाहिए तो फिर आध्यात्मिक धरातल तक उठना होगा और भगवान के सच्चिदानंद भगवान की शरण में आना होगा। और उससे क्या होगा, हमारे अपराध समाप्त हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी और अंत समय में सनातन परम धाम या फिर भगवान के धाम, शाश्वत जो धाम है उसको प्राप्त करेंगे। और आज भगवान इस श्लोक में, श्लोक नंबर 31 में अत्यंत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही एक सीक्रेट बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः, 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 नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नामनन्न कभी नहीं, अयम् यानी यह, लोक यानी ये जो संसार है, अस्थि जो है, अय यज्ञ से यानी यज्ञ ना करने वाले, कुतोन्य कहा, कुतो यानी कहा, अन्य यानी अन्य, कुरु सत्तम हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान कहते हैं हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में भी, इस जीवन में भी सुखी नहीं रह सकता है तो फिर अगले जीवन में कैसे रह सकता है। यानी भगवान ने पहले वाले श्लोक में क्या बताया, श्लोक नंबर 30 में बताया कि अगर यज्ञ करोगे तो तीन फल मिलेंगे, शुद्धिकरण होगा, आनंद की प्राप्ति होगी और सनातन धाम, जो धाम है सनातन धाम, उस पद को प्राप्त करोगे। तो भगवान ने कहा अगर इस संसार में आनंद चाहिए तो क्या करो, यज्ञ करो यानी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करो। तो अब भगवान कह रहे हैं कि देखो उस संसार में भी प्राप्त आनंद प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना पड़ा था, अब सुखी होना इस संसार में भी यज्ञ के बगैर संभव नहीं है तो फिर अगले जीवन की या अगले जन्म में कैसे रह सकता है। नायम लोकोऽस्य यज्ञस्य, इस लोक में भी यदि आप सुखी नहीं रह सकते, कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ यानी आप कुरुओं में सबसे श्रेष्ठ हो, आपको ये जानना चाहिए कि आपको यज्ञ के लिए कार्य करना है, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। अपनी ये जो तुम अगर युद्ध नहीं करोगे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, ये तो इंद्रिय तृप्ति होगी कि आप कार्य ना करके इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे हो कि बस ये मैं नहीं करूंगा तो मुझे आनंद आएगा। जैसे हम कोई सोचता है ना कि भाई ये कार्य ना करके मुझे आनंद आएगा, लेकिन कार्य करना और ना करना ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि यज्ञ के लिए होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अगर इस संसार में भी यज्ञ करे बगैर आप खुश नहीं रह सकते, आनंदित नहीं रह सकते, तो दूसरे संसार की क्या बात कीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री गोपाल जी बताते हैं कि मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन से बहुगुणित फलों के कारण है। यानी कि संसार में जो भी हम वास्तव में हैं, क्योंकि हमने इतने अपराध किए हैं कि हमारी वास्तविकता हमें पता नहीं है, जो हमारा रियल स्वरूप है उससे अनभिज्ञ है, हमें याद नहीं रहता भौतिक जगत में जो हमारा ये अस्तित्व है वो सब क्यों मिला, हमें ये अस्तित्व, हमें ये शरीर क्यों मिला है, अपने अपराधों के कारण। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। बहुत ही खास बात भगवान श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम अपराध क्यों कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए, और इंद्र तृप्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञान है, देहात्म बुद्धि है, अपने आप को आत्मा समझ नहीं रहे हैं। तो अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसका कारण क्या है, अज्ञान है। और अपराध के और इस संसार में रह रहे हैं तो उसका मतलब क्यों रह रहे हैं इस संसार में, क्योंकि अपराध किया, अपराध क्यों किया, अज्ञान के कारण, और यहाँ क्यों रह रहे हैं, अपराध के कारण। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस भावबंधन से बाहर निकला जा सकता है। श्री प्रभुपाद ने हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला है, यह मनुष्य जीवन एक ऐसा दरवाजा है जिससे कि आप इस अपराधमय जीवन से, इस भावबंधन से बाहर निकल सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इंद्र तृप्ति ना करके यज्ञमय जीवन गुजारो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो। कितना सरल है इस मनुष्य देह में भगवान को प्राप्त करना, एक मनुष्य देह, एक मतलब छोटा सा जीवन भगवान को देखकर उसकी बदले में शाश्वत आनंद प्राप्त करना। लेकिन आज का मनुष्य इतना ज्ञानी है कि वो कहता है कि भले मैं इस संसार में, इस जीवन में मैं कितने अपराध कर लूं, इंद्र तृप्ति किए ना, अपने सारे साधन जुटा लूं, आगे भले बारंबार मुझे जन्म मरण के चक्कर में क्यों ना फंसना पड़े, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसने देखा है, आज तो मजाक कर लूं। तो कितना ये बेवकूफी की बात है कि इतने मतलब शाश्वत सुख के लिए थोड़ा सा आनंद भी वो त्याग नहीं कर सकता, बल्कि ये आनंद भी नहीं है। अगर वो स्वयं भी थोड़ा सा भी अगर हम लोग सीरियस होके देखें तो इंद्रिय तृप्ति में कभी किसी को आनंद आता ही नहीं है। अतः श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि जैसे वेदों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग बताया गया। धर्म किसने करना है बताया था ना मैंने, धर्म इसलिए करना है कि मोक्ष प्राप्त हो, और अर्थ किसके लिए, धर्म पैसे किसने कमाने हैं, धन किसने अर्जित करना है कि हम धर्म कर सकें। काम कितना कि हम अपनी इच्छा मतलब अपनी जीव जी सके, जीव इतना काम इच्छा इतनी कर रही है कि जी सके, और मोक्ष वास्तविक लक्ष्य है। तो ये वेदों में हमें बताया गया है, और ये वास्तव में ये मार्ग दिखा क्यों बताए गए हैं, ये इसलिए कि इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सके। और धर्म या ऊपर संस्तुत किए गए अनेक प्रकार के यज्ञ से क्या होगा, जो भी यज्ञ होंगे ना, आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इंद्र तृप्ति जो है वो आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या होती है कि इनकम कम है, सब लोग यही सोचते हैं ना। तो अगर इच्छाएं कम होंगी तो इनकम की ये जो आर्थिक उलझने हैं वो खत्म हो जाएंगी। इच्छाएं नहीं है जीव के अंदर एक्सेस करने की, ये तो फिर है ना कभी भी उसको ना जैसे अर्निंग की प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरे पास इतना धन नहीं है, और जब इच्छा कम है, अर्निंग भी थोड़ी है, तो समस्याएं भी मतलब फिर क्या, आप वो सिंपल लिविंग में आपके पास समय बचता है कि आप ज्यादा भगवान की, जिसको ज्यादा कमाना और ज्यादा खाना और ज्यादा पहनना ओढ़ना की इच्छा होती है ना, वो कभी भी भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकता। उसको यही माला करने के लिए बैठेगा, बोलेगा अभी मुझे वो पार्टी आ रही है, मुझे नई ड्रेस चाहिए, और है ना ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, इधर घूमने जाना है, वो करना है। तो जब एक्सेस इंद्र तृप्ति होगी ना, तब हम भजन के लिए समय नहीं निकाल सकते। और जैसे यज्ञमय जीवन होगा, सैक्रिफाइसमय जीवन होगा, तो फिर क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सकेंगे भगवान की भक्ति के लिए। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। अगर सब लोग है ना अपनी लिमिटेड उसमें खाएंगे करेंगे, तो भी अगर यज्ञ कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप भोजन में दूध इत्यादि में कभी भी वो नहीं, वृद्धि होती रहेगी, कभी हमें मिलता रहेगा, कभी कमी नहीं होगी। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विवाद है। अभी कुछ लोग के पास अगर है ना शरीर की आवश्यकताओं के लिए प्रॉब्लम होगी कि ये नहीं है, जो भौतिक जो बेसिक नीड्स हैं जैसे दूध और है ना फल और सब्जियां अनाज, जब वो पूरी नहीं होंगी ना तब तक किसी को भी इंद्रिय तृप्ति याद नहीं आएगी। लेकिन जब ये बेसिक ये हमारी नीड्स जो है वो पूरी हो जाती है, फिर इंद्रिय तृप्ति की बारी आती है। तो वेदों में इंद्र तृप्ति के लिए नियम बताया गया है, विवाह का विधान किया गया है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमश छूट कर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर के सानिध्य प्राप्त करने में है। अब वास्तव में जीवन की पूर्णता क्या है, भगवान को प्राप्त करना। लेकिन जब तक भाव बंधन ये भौतिक बंधन खत्म नहीं होते हैं तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन यज्ञ संपन्न करने से यानी कि जब हम कार्य करते हैं कोई भी वो भगवान के प्रसन्न करने के लिए, तो क्या होगा, भगवान के साथ एक संबंध हमारा निर्माण हो जाता है। और इस तरह से जब हम आध्यात्मिक के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो भौतिक बंधन क्रमशः छूटता जाता है, फिर भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है और जीवन की जो वास्तविक मुक्ति की यानी कि भगवान के साथ सानिध्य करने की जो है वो उस रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करने से प्राप्त की जाती है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता है तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यही एक तरीका है, अगर शास्त्रों में यही लिखा है कि आप वेदों के द्वारा जो वेदों में कार्य कहा गया है उसी के अनुसार आप यज्ञ करोगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा, वरना क्या होगा, इस संसार में भी सुखी नहीं रह सकते तो अगले संसार में कैसे रह सकते हो। आशा ही नहीं की जा सकती, इस संसार में भी आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति को संयमित करना है। जब इस संसार में भी आप इंद्रिय तृप्ति करके इस जीवन से आनंद नहीं प्राप्त कर सकते तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे रहते हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिससे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अब यज्ञ में क्या है, कुछ यज्ञ किसी करते हैं स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए जो सकाम कर्मी होते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कुछ लोग इस तरह के लिए यज्ञ करते हैं जैसे हमने पढ़ा था ना देवताओं के लिए यज्ञ करते, शुरू में यही बताया था श्लोक नंबर 25 में, देवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते, कुछ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हाँ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे तो देवताओं को प्राप्त होंगे यानी स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे, और वहां पर भी अगर हम गए हैं तो त्याग किया, पहले क्या किया, यज्ञ किया यानी कि इंद्र तृप्ति को त्यागा, संयमित जीवन गुजारा और देवताओं के लिए यज्ञ किया, तो वहां पर गए हैं तो उसकी बदले में क्या मिलेगा, परम मतलब सुख फिर भी मिलेगा, वहां पर सुविधाएं हैं, जीवन इतना आनंदमय है कि एटलीस्ट मिलेगा ना सुख वहां पर जाकर। इस तरह भौतिक जगत में जो पदम पदम या त्रिपदा है वो तो नहीं होगी, तो वहां पर जाकर सुख तो मिलता है लेकिन एक दुख है, क्या, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे ऐसी जगह पर जाने का क्या फायदा जहाँ पर लिमिटेड या टेम्परेरी सुख हो, है ना, वास्तव सुख श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख तो वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अगर हम यह सारे सेक्रीफाई यानी जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो फिर हम कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। अतः कृष्ण महानुभावी जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस भौतिक जगत में बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन समस्त समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है, सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में नवधा भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जाता है लेकिन इस कलयुग के लिए शुरू की दो जो भक्ति है क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सिर्फ श्रवण करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये जो दो भक्तियां हैं उसी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और अगर हम लोग ये दो भक्तियां, भक्ति के जो दो ये काम है यानी श्रवण करना और कीर्तन करना, वो यदि हम करते रहेंगे तो फिर ये बाकी की सारी विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदन ये सब खुद ब खुद इसी में आ जाएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता ही श्रवण करने हैं और भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।